सब लोग भी भगवान के भक्त हैं और बहुत सारा भजन के कार्य करते रहते हैं। लेकिन ना जब शरीर जब बूढ़ा होता है ना, तो आज आपको जो कुछ पता नहीं है वो सब चीज़ें बाद में निकलने लगती है बाहर। जोड़ों का दर्द का मतलब क्या होता है, बैक एक का मतलब क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया था मतलब क्या होता है, लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है। हमने कितना लोगों को ट्रीटमेंट दिया है ब्लड प्रेशर का, डायबिटीज़ का, खुद को हुआ तो क्या होता है। हाँ, ये सब चीज़ नई नई होती है उत्पन्न। अभी आगे भागते थे हम लोग, अभी 2 सीढ़ी उतरने के लिए भी आराम से बस से उतरते, भाई कहीं फिसल गया तो, फिर ये टूट गया तो 6 महीने बंद हो गए। तो ऐसे जो बुढ़ापा है सब लोग को होता है, हम लोग को भी होने वाला है। लेकिन बुढ़ापा एक ऐसी समस्या है कि जिसको जिसके विषय में आपके मन की तैयारी नहीं होगी ना, तो आप जितना होना चाहिए उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ पाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे आप, अगर आपको आइडिया नहीं है तो। लेकिन आने वाला ज़रूर है वो, उसमें कोई कंसेशन नहीं है। इनको नहीं आएगा और मुझे आएगा तो इन लोगों को डिस्काउंट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब लोगों को उसी रास्ते से जाना है। तो भक्तों में बाकी लोगों में क्या अंतर है? भक्त लोग इस सच्चाई को भली भांति जानते हैं कि ये होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभुपाद जी जब वृद्धावस्था में तो गए थे ना, वो तो जवानों के नहीं गए थे, वृद्धावस्था में ही गए थे और बुद्ध बूढ़े हो गए वहाँ पर, 10-12 साल थे ना उसमें, तो और बूढ़े होते गए ना। तो एक समय ऐसा आया कि वो बिस्तर पे ही गिर गए, मतलब और आगे कुछ कर नहीं सकते हैं। उनकी सेवा करने वाले भक्तों को वो हमेशा कहते थे, ये मत समझना कि ये हालत तुम्हारी नहीं होगी, डोंट थिंक दिस विल नॉट हैपन टू यू। आप सब लोग, क्योंकि जो जितने लोग मिले उनको सब लोग जवान थे, 20 साल, 19 साल, 25 साल, हट्टे कट्टे नौजवान थे वो। और सेवा किसके कर रहे थे? जिनकी उम्र 75 साल, 76 साल की थी। तो वो कहते थे बार बार, ये मत सोचना कि तुम्हारी ये स्थिति नहीं होगी, तुम्हारे सबकी स्थिति होगी। और आज वो सब लोग ना, अभी आज सब लोग वो 70-75 की उम्र में आ गए, सारे लोग जितने भी थे शुरुआत में वो सब अभी 68, 69, 70 और 75, ये सब के बीच में हैं। और बहुत लोग अभी रिटायर भी हो चुके हैं, मतलब वो अभी यात्रा वात्रा नहीं कर सकते हैं, सफ़र नहीं कर सकते हैं, अभी एक ही जगह रहते हैं, वहाँ ही प्रचार करते हैं। और वो सब लोग अभी बता रहे हैं कि अभी हमको समझ में आ रहा है कि 70 साल की उम्र में प्रभुपाद जी आए तो किस स्थिति में आए होंगे वो, जो हमारी आज की स्थिति है और हमको क्या क्या कष्ट हो रहा है ये हमको पता चल रहा है। और ये अवस्था में वो अपना देश छोड़ के अनजान विदेश में गए थे। तो आज समझ में आता है कि प्रभुपाद ने कितना कितना त्याग किया, कितना मेहनत किया, कितना कष्ट उठाया, ये आज इस उम्र में आने के बाद में पता चल रहा है। अब तक तो खाली कहानी थी जो हम बार बार दोहराते थे, कथा में पढ़ते थे, लोगों को सुनाते थे। आज वो हकीकत के रूप में जब पता चलता है तो एक्चुअल पता चला कि प्रभुपाद जी ने क्या क्या त्याग किया, क्या क्या किया। हम जैसे लोगों को, मतलब वो सोचते हैं हम जैसे लोगों को भक्त बनाने के लिए कितना उन्होंने कष्ट उठाया। और 70 साल का आदमी जो है वो, जैसे आप जैसे जवान लोगों का प्लेट भी धो रहे हैं, खाना बना तो रहे हैं, भिक्षा मांग के भोग तो ला रहे हैं, ऊपर से खाना भी बना रहे हैं, ऊपर से परस भी रहे हैं, ऊपर से आधा आधा उनका एक स्टाइल है अमेरिकन लोगों का, कुछ खाया दिया तो उनको आधा ही छोड़ देंगे, उसको पिज्ज़ा दिया तो आधा टुकड़ा छोड़ देंगे, रोटी दिया तो आधा रोटी छोड़ देंगे, सब्जी छोड़ देंगे, ऐसा आधा खा के छोड़ देंगे, ऐसा उनका आदत है, क्या मालूम क्यों ऐसा है। उसको साफ करते थे, फिर प्लेट धोते थे और अगले दिन फिर तैयारी करते थे, फिर अगले दिन वही लोग आते थे। 2-3 महीना आने के बाद लोगों ने पूछा कि महाराज जी हम भी आपको हेल्प कर सकते क्या? तो प्रभुपाद जी ने बोला कि मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रहा था कि कब आप मुझे पूछोगे हेल्प कर सकते हैं क्या, कितने दिनों से मैं कर रहा हूँ, आपने पूछा, अच्छा लगा, ज़रूर करो। तब से वो लोग धोने लग गए, फिर कोई पहले रसोई में आने लगा, फिर कोई सब्जी काटने लगा, फिर कोई बोला 6 महीने के बाद बोला मैं सर मुंडवा सकता हूँ क्या? बोला मुंडवा लो, तिलक लगा सकता हूँ? तिलक हाँ लगा लो, धोती पहन सकता हूँ? हाँ पहन लो। ऐसे करके धीरे धीरे भक्त बने। लेकिन उस स्थिति तक आने के लिए, जिस स्थिति मतलब प्रभुपाद जी मैं सर मुंडवा लूं क्या, शेंडी रख के तिलक लगाऊं क्या, वो स्थिति में आने तक इत्मीनान से इंतजार किया। कोई बोला नहीं, अरे आप लोग अब तक मंदिर में रहने को आते नहीं हो, खाली आके खा के चले जाते हो, धोने धोएगा कौन उसको, हाँ मदद करो मुझे, ऐसा कुछ नहीं। जब खुद बोला तो बोला आ जाओ, खुद बोला तिलक लगाऊं, हाँ लगाऊं। मतलब कितना इंतजार किया संयम से, कितना पेशेंटली उन्होंने इंतजार किया। इसलिए लोग प्रभावित है बहुत। अभी आज भी प्रभुपाद को जाके 40 साल हो गए, कितने साल हो गए, 42 ईयर्स हो गए ना, अभी भी ऐसे बात करते कि प्रभुपाद जी अभी उनके साथ में है, ऐसे बात करते हैं उनके बारे में। जब उनका विषय निकलता है तो ऐसे बात करते कि प्रभुपाद जी अभी हमारे साथ में है, अभी भी मैं उनको मिलके आ रहा हूँ, ऐसा लगता है उनकी बातें सुनकर। इतना प्रेम, इतना अटैचमेंट कैसे उत्पन्न हो गया, क्योंकि कहा कि वो क्या बोलते थे कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमको 6 महीने तक। उनका वो बोलने का ढंग, उनका वो बंगाली स्टाइल में इंग्लिश बोलना और ऊपर से वो हैवी भगवद गीता का टॉपिक, कोई फिल्म की कहानी बोलना हो तो भी बोल समझ सकते हैं आप, लेकिन वो कोई भगवद गीता का टॉपिक समझा रहे हैं तो और एक हैवी सब्जेक्ट है वो। तो बोले 6 महीने तक समझ में नहीं आया क्या बोल रहे थे, लेकिन 6 महीने में क्या एक्सपीरियंस किया कि ये व्यक्ति के अंदर इतना प्रेम है लोगों के लिए, इतना प्रेम है, वो हृदय से ना सर, भाषा भाषा पार करके हृदय से उसका कांटेक्ट हो रहा है डायरेक्ट। कौन सी भाषा बोल रहा है, कौन सा खाना बना रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हार्ट टू हार्ट जो फीलिंग है ना वो ट्रांसफर हो रही है। इस हार्ट को पता चल रहा है वो हार्ट से क्या आ रहा है, प्रेम आ रहा है, करुणा आ रही है, दया, सेवा करने की इच्छा, इसलिए उसका हृदय परिवर्तन हो गया, हार्ट टू हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन। मैं जब हरे कृष्णा में आया था ना, और प्रभुपाद की बहुत फिल्म देखे मैंने बहुत सारे, वो उनकी कद, उनका चेहरा, उनका बोलने का स्टाइल, ऐसा एक भी कुछ इंप्रेसिव चीज़ नहीं था, सब ऐसा एकदम सनसनीखेज पर्सनैलिटी, आया तो सब सबको चकाचौंध कर दिया, हाँ ऐसा नहीं था, सिंपल मैन, शॉर्ट मैन, डार्क कलर मैन, ऑर्डिनरी लगेगा आपको, लेकिन सब कुछ ऐसा होने के बावजूद भी इसको इंग्लिश भी उनके ऐसा अमेरिकन स्टाइल में बोलते नहीं थे वो, ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन, ऐसा इंग्लिश मराठी अपना बंगाली टोन में बोलते थे। टाइम लगता है उनको सब समझने के लिए कैसा बोल रहे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने इतने लोगों का हृदय परिवर्तन किया, मतलब क्या कितनी करुणा होगी उनके मन में, कितनी हृदय में वो कशिश होगी दुखी लोगों के प्रति। इतना बुढ़े व्यक्ति ने इतने बुढ़े उम्र में कितना सेवा किया। तो मैं ये आपको बताना चाहता था कि बुढ़ापा एक जीवन का अविभाज्य अंग है और सत्य भी है, वो आप टाल नहीं सकते। तो उसके लिए जानकारी कर लो और पहले से ही मन की तैयारी कर लो कि आगे जाकर क्या होगा, और वो स्थिति में भी हमको क्या करना है जो हम करना छोड़ नहीं सकते हैं। जैसे आज आप जप कर रहे हो, भगवान के नाम का जप कर रहे हो, तभी भी आपको करना ही है, रिटायरमेंट नहीं है उसके अंदर। 58 हो गया तो हो गया, 16 माला 58 हरि बोल, वे आपको पेंशन मिलेगा उसके ऊपर, आपको मरते दम तक करना है वो। जो भी सेवा कर रहे हो, सेवा बस थोड़ी बदल सकती है, लेकिन जब तो करना ही है, संग तो करना ही है, शास्त्र तो सुनना ही है आपको, उसपे डिस्काउंट नहीं है। हाँ भाई अभी माता जी अभी खाना नहीं बना सकते 50 लोग का, जब जवान थी तब भी बनाया होगा 25-50 लोग का खाना फेस्टिवल में, अभी शायद वो नहीं करती होगी, लेकिन बाकी जब तो करना ही है, अभी सत्संग में कथा सुनना ही है उनको, कभी टाइम होगा तो दर्शन में जाना ही है, और दीपदान में जाएंगे ना कार्तिक में, हर रोज दीपदान करेंगे, बोलेंगे सर मैं बुढ़ी हो गई हूँ, ऐसा भी करेंगे, जाएंगे कैसे किसी को पकड़ के रिक्शा में जाके भगवान को दीप दिखा के आएंगे। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है कि वही चीज़ें बदलते हुए स्थिति में भी करते रहना है। स्थितियाँ बदलेंगी और बदलेंगी जरूर, उसमें कोई संदेह नहीं है। स्थिति शरीर की बदलेगी, मन की बदलेगी, परिवार की बदलेगी। देखो एक जमाना था माता जी के पति भी थे, अभी नहीं रहे वो स्थिति बदल गई कि नहीं? और एक जमाने में अच्छी जवान शरीर था, अभी वो तो वृद्ध भी हो गया। कितनी चीज़ें बदलती है जिंदगी, बताओ आप। जिंदगी में कभी भी कुछ चीज़ कॉन्स्टेंट और स्टेडी रहती नहीं है, हर समय स्थिति बदलती जाती रहती है। ऐसे ही जब दर्शन करने गए थे तो वो बंदर आ गया, अभी क्या अभी बोलेंगे, स्थिति बदल गई, तुरंत बिस्तर में आ गई, 3 महीने के लिए ऑपरेशन हो गया, तो जरूरी नहीं कि आपको बुढ़ा ही होना है उसके लिए, किसी भी स्थिति में स्थिति बदल सकती है। कभी आप शादीशुदा नहीं थे, अभी शादीशुदा हो गए, फिर उसके बाद माता पिता हो गए, उसके बाद बड़े बच्चों के माता पिता हो गए, फिर बच्चों की शादी हो गई, वो भी चेंज हो गया, अभी बहू घर पे आई, वो भी चेंज हो गया, अभी आप मालकिन थे, बहू मालकिन हो गई, अभी चेंज तो होना है ना, चेंज तो होना ही है। ये सारी बदलती हुई स्थिति में आपको वही करना है भगवान के लिए जो पहले किया था आपने, और करते रहना है। ये चैलेंज है लाइफ का। मैंने ना वो एक डिप्लोमा किया है, हाँ, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का, मानसिक परामर्श के विषय में मैं डिप्लोमा किया है। उसके अंदर एक 6 विषय में से एक पूरा विषय था, क्या नाम था उसका, साइकोलॉजी ऑफ एडजस्टमेंट, मतलब बदलाव की मानसिकता। और पूरा किताब में लिखा है कैसे हम जन्म लेने से लेकर मरने तक केवल बदलने वाले स्थिति में ही यात्रा करते रहते हैं। कितना सुंदर किताब है वो, इतनी सी किताब है, लेकिन जन्म में क्या बदलाव होता है कि जन्म के पहले सांस लेनी नहीं पड़ती है, लेकिन जन्म होते ही सांस लेने की मेहनत बच्चे को करनी पड़ती है, अंदर सांस ले रहे हो, बाहर आते ही फेफड़े खोल के उनको अपना आप ब्रीदिंग करना है, पेट के अंदर होता है तभी उसको कुछ खाना पीना चबाना नहीं पड़ता है, अपने आप यहाँ से रेडीमेड फूड आ रहा है, रेडीमेड आ रहा है, कोई काम नहीं, खाली घूमने का अंदर बस। लेकिन जैसे ही बाहर आया तो उसको अभी मेहनत करके माँ के स्तन से दूध खींचना है, वो ऐसा अपने आप टपकता नहीं मुंह पे, उसको ऐसा मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत कसरत करनी पड़ती है, तब जाकर उसको ट्रेनिंग देके बच्चा फिर सेट होता है, फिर वो ठीक से पीता है। लेकिन वो केवल मुंह में स्तन देने से दूध टपकता नहीं अंदर उसके, उसको मेहनत करनी पड़ती है, तो भी नई चीज़ है, अभी अपने आप मेहनत करके पीना है, रोना है उसके लिए, अंदर थोड़ी रोना पड़ता था, भूख लग रही है बच्चा रो रहा है पेट में, ऐसा होता है कभी नहीं, बाहर आके उसको रोना पड़ता है, भूख लगी तो पुलाना पड़ता है, मैया किधर हो, भूख लग रही है, अरे अभी तो पिलाया था, नहीं अभी मेरी पॉटी हो गई है, अभी फिर रो रहा हूँ मैं, तो अंदर थोड़ी पॉटी के लिए बुला रहे हो, अंदर पॉटी हुई यूरिन हुआ तो कोई बुला रहे हैं, लेकिन बाहर आते ही उसको मेहनत, चेंज होगा कि नहीं उसका, फिर वो खड़ा हो रहा है तो भी चेंज होगा कि नहीं, फिर उसको स्कूल जाना पड़ रहा है, अभी रो रहा है वो, नहीं मैं जाना चाहता, घर में रहना चाहता हूँ, चेंज हो गया, फिर बड़ा हो गया, फिर जवान होने लगेगा, फिर उसको और कुछ अट्रैक्शन लगेगा। मतलब क्या है, हर समय जिंदगी में चेंज है, अभी स्कूल में था, अभी कॉलेज जाएगा, अभी कॉलेज में, अभी वो बहुत दूर कहीं नागपुर में एडमिशन मिला है उसको, अभी वहाँ नई जगह जाएगा, पता नहीं कहाँ खाएगा कहाँ सोएगा, सब बदल रहा है, अभी नया पढ़ाई करना है उसको, पता नहीं कौन साथी होंगे, कौन से देश से आए होंगे, कितना चेंज है। फिर नौकरी करना है नई एक कंपनी में जहाँ कोई जानता पहचाना नहीं है, वहाँ पर काम करके अभी पहली बार धन कमाना चालू करना है, अब तक तो पिताजी से लेने का ही आदत थी मुझे, अभी मुझे खुद कमाना है, खुद कमाकर खुद खाना है, फिर बीवी आएगी, फिर बच्चे आएंगे, हर समय बदलती हुई स्थिति में आपको चलना है। और जो भक्त बना है उसको सारी बदलती हुई स्थिति में एक निश्चय रखना है कि मुझे भगवान का नाम जपना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जीवन में कहते हैं एक चीज कांस्टेंट है, वो है बदलाव। हर चीज हमेशा बदलती रहती है, ये चीज हमेशा रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है, आप चाहो या ना चाहो, बदलाव निश्चित है और बदलाव कांस्टेंट है, सातत्य पूर्णता से आपके जीवन में बदलाव आता रहेगा। तो चैतन्य महाप्रभु कहानी 2 बार मुझे याद आई तो थोड़ा सा बता दूं, चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद कहाँ, वाराणसी गए ना प्रभु, वाराणसी गए, उधर वो एक बड़े सन्यासी थे, प्रकाशानंद सरस्वती, सन्यास भी ऊंचा ऊंचा था बहुत, सरस्वती पदवी देने वाले सन्यास संप्रदाय में उनका सन्यास हुआ था। महाप्रभु चैतन्य का भारतीय संप्रदाय में सन्यास हुआ था, जो सरस्वती नाम के सन्यास से थोड़ा निचला माना गया है। उनको लोगों ने कहा भी था, अरे आप हम आपको सरस्वती में सन्यास दिला देंगे, आप भारतीय में क्यों लेते हो, होता है ना, अरे हमारे होटल में उधर तो एयर कंडीशन भी है। इस तरह से उनमें भी थोड़ा भेदभाव होता है। तो वो सरस्वती सन्यासी जो थे प्रकाशानंद जी, उनके 60,000 शिष्य थे। कोई आसान बात नहीं है इतना शिष्यों को संभालना और उनका कर्म लेना और बाद में उनका उद्धार करना। लेकिन मायावादी थे वो। मायावादी मतलब क्या बताओ? मायावादी मतलब क्या? भगवान को साकार नहीं मानते। और भगवान को व्यक्ति नहीं मानते। हाँ, भगवान में एक रूप होने का प्रयास करते हैं, भगवान बनने का प्रयास करते हैं। हम लोग भगवान बनने का प्रयास नहीं, हम लोग उनको सेवक बनने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो। हर व्यक्ति जो दुनिया में आता है ना, वो हर व्यक्ति को बॉस बनना है। किसी को नौकर बनना है क्या बताओ? नौकर भी आएगा बन के, तो उसको आगे जाके बॉस बनना है, ऊपर ऊपर जाना है उसको। कम से कम लोग मुझे बताएं और अधिक से लोग मेरी सुने। तो इसी भाव से हम लोग नीचे आते हैं और यहाँ पर आप भजन भी उसी नाम से करते हैं कि मुझे उनसे एक रूप होना है। और बता दें भाई, आप चिंता मत करना, आप ये नाम लोगे ना, एक दिन आप खुद भगवान बन जाओगे। तो अच्छा रहता है सुनने के लिए कि बस नाम लेना है, उसके बाद मैं खुद ही वो बन जाऊंगा जो मैं नहीं हूं। उसको मायावाद कहते हैं इन शॉर्ट, क्योंकि ये माया है ना, माया, इसलिए उसको मायावाद कहते हैं। कि माया में ही वो सत्य मानते हैं माया को, और सोचते हैं कि हाँ, अगर मैं नाम लूंगा भगवान का तो फिर मैं एक दिन वही बन जाऊंगा जिनका नाम ले रहा हूं। मुझ में उसमें कोई अंतर नहीं है, आज डिफरेंस है, क्योंकि आज मैं माया में फंसा हूं। अगर मैं माया से निकल गया ना, तो मैं वही बन जाऊंगा जिसका नाम ले रहा हूं। इस लक्ष्य से वो चलते हैं। इसलिए शास्त्र में लिखा है कि वो लोग भगवान का, साक्षात भगवान का अपराध करते हैं। भगवान बनना चाहते हैं, भगवान का पद लेना चाहते हैं, भगवान का जो अधिकार है वो ग्रहण करना चाहते हैं। भगवान भोक्ता है तो खुद भोक्ता बनना चाहते हैं, सेवक नहीं बनना चाहते, भगवान से एक रूप होना चाहते हैं। तो इसलिए मायावादी सुनेले भाष्य हैलो सर्वनाश। महाप्रभु चैतन्य कहते हैं मायावादी का, किसी का सुना ना आपने मायावादी वाले बोलने वाले का, तो सुनकर भी आपका सर्वनाश हो जाएगा। अब सर्वनाश क्या हुआ? धन तो वैसा ही है मेरा, प्रॉपर्टी भी वैसे ही है, सब कुछ। सर्वनाश क्या हो गया? सर्वनाश चेतना का हो गया, जो भगवान के बारे में सत्य ज्ञान है वो नष्ट हो गया, वही सर्वनाश कहते हैं। धन दौलत लुट गई, आग लग गई, कोई मर गया, तो सर्वनाश हो गया, हाय हाय, वो सर्वनाश नहीं है। सर्वनाश वो है जहां पर आत्मा का सही स्वरूप नष्ट हो जाता है और आत्मा का भ्रमित स्वरूप के आधार पर अपना जीवन बिताते हैं, वो सर्वनाश है। सत्य से दूर चले जाना वो सर्वनाश है। सत्य के साथ चलना ये उद्धार है। सत्य को समझना और सत्य के अनुसार चलना ये उद्धार है जीवन का। तो ये मायावाद सत्य से दूर लेने वाला मार्ग है, भ्रम का मार्ग है। तो महाप्रभु चैतन्य तो अचिंत भेदाभेद तत्वी है ना, वो तो भगवान को व्यक्ति मानने वाले संप्रदाय के हैं। और जहां जहां गए उन्होंने मायावादियों को भगवान का भक्त बनाया। तो इनके घर भी गए तो 60,000 शिष्यों के बीच में वो स्वामी जी बैठे, जो गुरुदेव है सबके। तो उनकी सभा में गए ना, तो वो सभा में जब जाते हैं ना, तो अभी भी आश्रम में रिवाज है, जहाँ पर आते हैं वहाँ पर पहले पाँव धोने की जगह होती है। पहले वो नल में से आप चलाते हो और नीचे नल बहुत नीचे होता है और पाँव भी नीचे होता है, तो नल खोल के पाँव आगे करते हैं, थोड़ा जल डालते हैं उसके ऊपर, फिर वो उसको धो के अंदर जाते हैं। अभी भी बहुत जगह पर ऐसी स्थिति है। और रूप गोस्वामी की जो जगह है ना, उधर भी ऐसी ही व्यवस्था थी। पहले सब गोस्वामी लोग एक जगह पाँव धोकर फिर एक जगह बैठने आते थे। तो वो चैतन्य महाप्रभु उसी जगह बैठ गए जहाँ पर सभी सन्यासी लोग पाँव धोकर अंदर गए थे। वो पानी वाली जगह में बैठ गए वो, और थे कैसे वो? गोल्डन रंग के एकदम, हजारों सूर्यों के समान प्रकाशित शरीर था उनका, सुनहरा रंग का। इतने लंबे चौड़े, इतना सुंदर सन्यास वस्त्र, इतना चमकता हुआ सर उनका, तक तेज से भरा हुआ। हाँ, लेकिन नम्रता से वहां जाके बैठ गए वो। तो वो जब आए और बैठे तो प्रकाशानंद जी ने उनको देखा, अरे इतने तेजस्वी सन्यासी वो पानी की जगह बैठे हैं जब सब लोग पांव धो रहे हैं, तो खुद उठकर आए वो। उनको ठीक नहीं लगा, क्योंकि उनको पता था खुद सन्यासी थे, और एक सन्यासी को पता होता है कि सन्यासी का आदर कैसे करना चाहिए। तो आए वहां पर, वो कहा कि महाराज जी आप इधर क्यों बैठते हो? वो कहते नहीं तो मैं तो पतित जीव हूं, मैं तो कोई हूं नहीं। नहीं नहीं आप पतित हो क्या? वो आप सन्यासी हो, इतना तेज है आपके चेहरे पर, ये कैसे हो सकता है कि आप यहाँ बैठे हो हम वहां बैठे? नहीं, आपको आना। हाथ पकड़ के ले गए उनको। और एक सम्मान पूर्वक स्थान दे दिया उनको। तो कहते हैं कि मायावादी थे वो, लेकिन उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सम्मान के विषय में सोचा और आकर उनकी सेवा की, जिसके बावजूद उनको वो सम्मान वो दिया उन्होंने। इसी चीज के वजह से उसी समय उनका उद्धार हो गया था। थे तो मायावादी, लेकिन वो सेवा जो उन्होंने किया ना, वो भी हृदय से किया ना। ऐसा किसी ने बोले कि नहीं कि अरे महाराज जी आप देख नहीं रहे क्या, वो कहाँ बैठे, आप क्या कर रहे हो, बुलाओ उनको। नहीं नहीं खुद उठ के गए, वो प्रेम से गए, आदर से गए, सम्मान से गए, और बड़ी विनती पूर्वक बात करके उनको आदर से उठाकर हाथ पकड़ के उधर बिठाया अपने बाजू में जाकर। फिर उसके बाद इसको क्या कहते हैं, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया ना, एक योग्यता तैयार हो गई। अभी महाप्रभु जी के मुख से सत्य के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्य हो गए वो इसी छोटी सी सेवा से। तो फिर आगे संवाद जो हुआ बहुत लंबा चौड़ा संवाद हुआ, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। 60,000 शिष्यों के साथ उन्होंने महाप्रभु की दीक्षा ग्रहण की, उधर के उधर ही होलसेल। हमारे है ना भक्ति अपने जय पताका महा कैसे रहते हैं, और ऐसे ऊपर स्टेज में बैठते हैं, तो 700-800 लोग बैठे हैं, सबका नाम दीक्षा देते जाते हैं एक के बाद एक के बाद, एकदम होलसेल में है ना। कैसे देखो कितना महिमा है, कितना गौरव है, कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है उनके अंदर लोगों का उद्धार करने की। तो 60,000 शिष्यों के साथ महाप्रभु ने सबको दीक्षा दे दिया उधर के उधर ही। देखो कैसे आए थे, एक गंदी जगह पर बैठकर उन्होंने ऐसा अपना प्रवेश किया था, लेकिन वो नम्रता की वजह सब लोग प्रभावित हो गए थे। अरे इतना विद्वान सन्यासी है, कितना नम्र है, लेकिन कोई अपना ऐसा नहीं कि 10-15 लोग साथ में चल रहे हैं और उनको हवा दे रहा है, कोई दस्ते में फूल डाल रहा है, कोई रास्ता बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं। नम्रता सबसे बड़ा हथियार होता है किसी व्यक्ति का। जितना आप अपने पद से, अपने धन से, अपनी सुंदरता से, अपने यौवन से, अपने बुद्धि से, ज्ञान से लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, उतना आप नम्रता से कर सकते हो। सारे कार्ड आप फेंकेंगे तो भी आप लोगों को आपसे प्रभावित होंगे, लेकिन उतना ही होंगे जितने आपकी नम्रता को देखते होंगे। और वो ऐसा अस्त्र है कि दुष्ट आदमी भी नम्रता से प्रभावित हो जाता है। दुष्ट भी दुष्ट होगा ना, राक्षसी स्वभाव का होगा, पापी होगा, वो व्यक्ति भी सामने वाले व्यक्ति की नम्रता देखकर पिघलता ही है। कैसे, एक नाथ महाराज थे, एकादशी का दिन था, वो नदी में स्नान कर रहे हैं। अभी दीवार को टेक के बैठेंगे ना तो आंखें तो कहेंगे ही कि हमें थोड़ा, हाँ कुर्सी में बैठना, कुर्सी बैठो, कुर्सी बैठो, बैठो बैठो बैठो। तो एकनाथ जी की एकादशी चल रही है और वो नदी में स्नान करने जा रहे हैं, है ना। तो उनका निंदक था ना, निंदक जो निंदा करने वाला, उनका घृणा करने वाला व्यक्ति ऐसे ऊपर बैठा है, थोड़ा सा मतलब मेरी हाइट ऐसी चलनी, उसके ऊपर एक जगह है ऐसा टील जैसा, उधर बैठा हुआ है। महाराज जी स्नान करके आए तो उस पर थूक दिया उसने। महाराज जी उनको देखा, वापस नदी में गए, वापस स्नान किया, वापस आए, वापस थूका उसके ऊपर, वापस उसको देखा, वापस नदी में गए, वापस स्नान किया, वापस आए। अरे 108 बार हो गया, 108 बार थूका उसके ऊपर, कुछ नहीं बोले। और 108 बार थूकने के बाद में थूक ही बची नहीं मुंह में, मुंह ही सूख गया। अभी है ही नहीं तो क्या थूकेंगे, अभी होता ना वो शरीर में जल का प्रमाण होता है, जल भी होता है, अभी कितना थूकेंगे तो उतना तो जल जाएगा ना बाहर। वो तो बीच में थोड़ी पानी पी रहा है, भाई लोटा रखा है वो, एक लोटा पी रहा है, एक बार थूक रहा है, थोड़ा ऐसा कर रहा है, वो तो थूक रहा है, बाद में थूक ही कम हो गई, उसके मुंह में थूक ही नहीं है। तो वो चरणों में गिर गया उनके जाके, अरे महाराज आप किस मिट्टी के बने हो, 108 बार थूकने के बाद भी आपने मुझे एक बार भी टोका नहीं, बोला नहीं, कुछ नहीं, विरोध नहीं जताया या कुछ असंतुष्टि जताई नहीं, आपने कुछ भी नहीं किया, क्या बात क्या है, मतलब ऐसे क्या है क्या जिससे आपने एक बार भी जरा सा गुस्सा नहीं आया। उन्होंने कहा आप गुस्से की बात कर रहे हो, अरे तुम्हारा अहो भाग्य है, मैं तो 108 बार डुबकी लगाने के भाव से तो आया नहीं था, एक ही बार स्नान करने के भाव से आया था, अरे आपके वजह से 108 बार स्नान हो गया तो दुख का बात क्यों करूं मैं, दुखी होने का सवाल ही नहीं उठता है। मैं तो 108 बार डुबकी लगाने के भाव से तो आया नहीं था, मैं तो एक ही बार लगा के चला रहा था, ये तुम हो उसकी वजह से मुझे आज 108 बार नदी में, पवित्र स्थान नदी में एकादशी के दिन डुबकी लगाने का भाग्य प्राप्त हुआ, तो मैं क्यों नाराज हो जाऊं, और सुखो मैं और बार स्नान करने जाऊंगा। इसको कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। हाँ, विपरीत स्थिति में भी कैसा विचार करना चाहिए और कैसा विचार संत लोग करते हैं, ये हमको समझना है। संतों का भाव होता है ना, वो मतलब उनको उनको गुस्सा तो आया ही नहीं, तो आना स्वाभाविक था, या कम से कम अभी वो बोल रहा है कि महाराज सॉरी, हाँ मैंने आपके ऊपर थूका, तभी तो कुछ बोल लेते चांस आया तो। तुम क्या समझते हो अपने आप को? मैंने चुपचाप सह लिया इसलिए मैं भी मार सकता हूँ आपको, क्या समझते हो आप? ये मत समझना मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने किया नहीं, ऐसे कुछ बोला नहीं उन्होंने। उनका मूड ये था कि भाई ठूक रहे हो, अच्छा है भाई, गंदा हो गया, मैं वापस आके स्नान करूंगा। ये भक्त है, इसे भक्ति कहते हैं। और ये जो मैंने क्यों बताया आपको कि ये घृणा करने वाला व्यक्ति भी प्रभावित हो गया, चरणों में गिर गया उनके, क्यों? नम्रता की वजह से। और पहले बार एक लगा देता उसको तो वो भी लगा देता, वो तो मारामारी करने के लिए आया था उधर, बोले कैसे भी छेड़ूं उसको और बहाना बनाऊं पीटने के लिए, तो वो तो उसी भाव में आया था उधर, वो थूक क्यों रहा था कि भाई तू थूकेगा तो कुछ ना कुछ बोलेगा, तो मैं फिर और झगड़ा करूंगा, फिर मारामारी करूंगा, फिर पीटूंगा, मार दूंगा मैं उसको, इस भाव से तो आया था ना वो। लेकिन वो भी व्यक्ति जो इतनी घृणा करने वाला है, वो भी बदल गया पूरा, भक्त बन गया वो, चरणों में गिर के शिष्य बन गया उनका। कहने का तात्पर्य मेरा ये था कि जितना आप बुद्धि से, विद्या से, अधिकार से लोगों को प्रभावित नहीं कर सकते, उतनी हजारों गुना ज्यादा आप अपनी नम्रता से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। और महाप्रभु जी का यही सबसे बड़ा टीचिंग है कि तृणादपि सुनिचेना, जब नम्र बनेंगे हम तो शायद बाकी सारे गुण हमारे अंदर होंगे या नहीं होंगे वही चलता है, चल जाता है। लेकिन बहुत सारी विद्या है, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारे वेदों का नॉलेज है, बहुत सारे कैसे यज्ञ करते हैं उसकी जानकारी है, बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन नम्रता नहीं है, बहुत अहंकार है उसका, तो लोगों को वो आदमी अच्छा नहीं लगेगा। भले ही कितना बड़ा पंडित होगा, बात करने में इतना घमंड है उसके अंदर, बात नहीं कर सकता उसके साथ। इसलिए गीता में क्या कहते हैं, विद्या विनय न संपन्नी, जहां विद्या होती है वहां नम्रता नहीं होगी तो विद्या भी बेकार है वो। और विद्या को तब कीमत प्राप्त होती है जब विद्या नम्रता के साथ जुड़ जाती है। जब विद्या प्राप्त होने पर भी आदमी नम्रता बनाए रखता है तो विद्या पर चार चांद लग जाते हैं, वो विद्या की कीमत बढ़ जाती है जो आपके पास में है, वो विद्या अमूल्य हो जाती है। सबको प्रभावित करने वाली विद्या है जब वो नम्रता के साथ में जुड़ी हुई है। जब विद्या का विवाह नम्रता से होता है तो वो विद्या सबको आकर्षित कर लेती है। जरा सा एक श्लोक बोलने पर किसी को गर्व हो गया तो लोग उसको इतना पसंद नहीं करते, क्या है इतना बड़ा, क्या है इतना क्यों गर्व कर रहे हैं, क्योंकि नम्रता ये लॉन्ग टर्म सिचुएशन है। और बाकी सारा अधिकार, विद्या, विद्या जितनी बुद्धि है ना, वो टेम्पररी सिचुएशन है। नम्रता ये लॉन्ग टर्म प्रपोजिशन है, लंबे समय तक का प्रस्ताव है नम्रता, लंबे समय चलने वाला कार्ड है वो, बाकी सबका एक्सपायरी बहुत जल्दी जल्दी होता है। अभी मैं मेरा आज का प्रवचन शुरू करूंगा जिसके लिए यहां पर आया था। वो ये है कि एक राजा थे आपके चेन्नई में, हाँ, कुलशेखर, सुना है ना आपने, कृष्णा त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्वैत ऋष तुम्हें मानस राज हमसा, सुना है आपने, प्राण प्रणाण प्रयाण समयी कपवात पित्तौ कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्ते। कितने लोगों ने सुना है, आपने नहीं सुना है? अरे क्या बताऊं, अभी गाली दूं कि तारीफ करूं? ये आपके अस्पताल में पिछले 10 साल से बज रहा है और दिन में कम से कम 2 बार तो बजता ही है ये, और आप कहते हैं सुना ही नहीं कभी। इसका मतलब जो बेचारे दिन भर गाते हैं आप कभी उसको सुनते ही नहीं हो, रोज गाते हैं। और ये श्लोक जो मैंने गाया वो प्रभुपाद जी गाते हैं रोज, वो राजा कुलशेखर ने कहा हुआ श्लोक है। वो कहते हैं कि हे भगवान, कृष्णा त्वदीय पद पंजरांतम, हाँ पद पंकज पंजरांतम, कि आपका जो चरण कमल है ना वो कमल जैसा है और मेरा मन जो है वो राजहंस की तरह है, मानस राजहंस, वो मेरी इच्छा ऐसे है कि जब सब कुछ ठीक है ना, मतलब बीमारी नहीं है, परेशानी नहीं है, मन शांत है, परिवार ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है, उसी समय ये मेरा मन का राजहंस जो है आपके पैर के रूपी जो कमल है उसके अंदर लग जाए, उसका मन, मतलब मेरा मन का राजहंस जो है उसी में लग जाए, घुल मिल जाए उसके अंदर, अपने जीवन को एक रूप करें, आपके चरणों से लीन हो जाऊं, मतलब यही अर्थ है उसका। क्योंकि जब प्राण जाने का समय आएगा, प्राण प्रयाण समये क्या होगा, कफवात पित्तौ, ये तीन जो दोष है ना, कंठावरोध धन विधौ, गले में आके अटकेंगे, कंठा अवरोध अवरोध करेंगे, गले में आके ऐसे अटकेंगे आप सांस नहीं ले पाएंगे, तब स्मरणम कुतस्ते, तब कहाँ से आपका स्मरण होगा, स्मरणम कुतः ते, स्मरणम कैसे होगा, वो स्मरण जो आपको होना चाहिए, मेरा मतलब मेरे को आपका स्मरण होना चाहिए, वो उस समय कैसे होगा जब मेरे कंठ में कफ पात पित्त एकत्र आके चौकअप हो जाएगा, तो मैं कहाँ से आपका नाम लूंगा। इसलिए हे भगवान अभी सब कुछ ठीक ठाक है ना, तब तक मेरे मन को आपके चरणों में लगने दो, बाद में पता नहीं क्या होगा। ये श्लोक उन्होंने लिखा है, इतना सुंदर श्लोक है, और कोई सन्यासी बाबा नहीं थे, वो राजा थे, धनी राजा थे बहुत थोड़े, ये चेन्नई के जगह पे जो देश था उसके राजा थे वो, बहुत इतने फेमस थे राजा, वो इतने समृद्ध थे, उनका राज्य में सब कुछ इतना, उनका जो था ना व्यवस्थापन, राज चलाने का तरीका इतना बढ़िया था कि उनको राज चलाने का कोई श्रम ही नहीं लगता था, क्योंकि सब लोग बढ़िया से काम कर रहे हैं, अपना अपना काम बढ़िया से कर रहे हैं, किसी से झगड़ा नहीं कर रहे हैं, किसी सबसे सहयोग के साथ में कर रहे हैं, जो बताया गया वो हो रहा है, सब कुछ अपने अपने अपने, जैसे आपका आप सब लोगों का काम क्या है सबको लिख के दिया है, जॉब डिस्क्रिप्शन है ना, आपको पता है क्या करना है, और सब लोग अगर उसको दिल लगा के करेंगे तो सुपरवाइजर को काम क्या बचेगा, वो तो बेचारा दिन में 64 माला करेगा यहाँ बैठ के, क्योंकि सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, किसी को दंड देने का जरूरत नहीं है, किसी को बताने का जरूरत नहीं कि तुम करो क्यों नहीं कर रहे हो, बैठो बैठ क्यों रहे हो, ये करो वो करो, खाली हो क्या, पानी दो पेड़ को जाके, ऐसा बताने की जरूरत नहीं, अपने आप ही सब हो रहा है। तो जो मैनेजमेंट में बैठा है वो बोलेगा अभी तो काम ही कुछ नहीं है तो फिर 64 माला कर लेता हूँ, ऐसी इनकी अवस्था थी। इनके राज्य में सब लोग इतना बढ़िया काम कर रहे थे, सामान्य प्रजा से लेकर मंत्री सब अपना अपना काम इतना बढ़िया कर रहे थे कि इनके राज दरबार में केवल सत्संग ही होता था, कोई मीटिंग वीटिंग होती नहीं थी, क्या हो रहा है, क्या तकलीफ हो रही है, क्या दंड दिया जाए, क्या उसका कायदा क्या बोलता है, शास्त्र क्या बोलता है, जजमेंट हो रहा है, राज न्यायाधीश आ रहा है, वहां से जज आ रहा है और आरोपी को ले लाया जा रहा है, और वो उसका क्या अदालत चल रही है, कुछ है ही नहीं, जैसे अपना वो कोर मीटिंग होता है वैसे उनका दरबार रोज होता था, सब लोग आते थे उसके अंदर, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो क्या है, संत लोगों को बुलाते थे और सत्संग करते थे दिन भर, और इतना सत्संग करते थे, इतना सत्संग करते थे कि बड़े राम जी के भक्त थे वो, उन्होंने ना रामायण के पाठ करने वाले को बुला बुला के रखा था दरबार में आने का, रोज रामायण सुनाने का। लेकिन एक बार वो रामायण में इस कथा ऐसी आ गई कि सीता जी को रावण हरण कर रहे हैं, तो इतना भाव में मग्न थे वो, तलवार लेके उठ गए, अब भी जाता हूँ मैं, मतलब उनको लगा कि सही में अभी हो रहा है, ऐसा नहीं कि वो कथा सुन रहे हैं कुछ 2 लाख साल पहले की, ऐसे नहीं। तो वो मंत्री लोगों को मालूम था, वो रामायण बोलने वाले को बोलते थे भैया वो रावण वाली कथा मत बताना, अच्छी अच्छी कथा बताना, मतलब संघर्ष हो, सीता हरण हो रहा हो, वो शूर्पणखा आ रही हो, वो इसको काट रही हो, वो इसको नाक काट रहे हैं, इसको फिर उठा के ले गया, फिर ये वो सारी बातें मत बताना, अच्छी अच्छी बातें बताना, सीताराम जी को मिल रही है उधर मिथिला के वन में, उनका विवाह हो रहा है, राम जी ने धनुष तोड़ दिया है, ऐसा मतलब मधुर मधुर कथा करना, और वहाँ तक आना नहीं, वहाँ तक आने के बाद में रिपीट करना बाकी कथाएं, ऐसा बोल के रखा था। तो एक दिन क्या हुआ ना, वो जो कथा बोलने वाला था ना उसको पूरा क्या बोलते हैं उसको ओरिएंटेड फुल्ली, वो बेचारा बीमार हो गया, तो सीएल लिया उसने, सिक लीव लिया, तो उसके बदले में दूसरा आया, दूसरे को मालूम नहीं था, वो अपना जोरदार पहुंच गया सीता हरण तक सीता हरण तक पहुंच गया वो, और आप बांधे ना कि सनसनी कहता है रावण आया सीते, इस वन में राम राम के साथ क्या रखा है, मैं रावण त्रिलोक विजयी, मेरे साथ चलो, नहीं आ रही हो, लो मैं छीन के ले जा रहा हूं। तो ये सुनते ही वो राजा तो ऐसा गुस्से में आ गया, उसने सेना को आदेश दे दिया, चलो सेना सब लोग निकलो। तब तक कथा वो पहुंच गई थी कि वो उड़ के ले गया उसको, उधर बीच में जटायु का वध भी हो गया, उसके बाद में वो आकाश में उड़ के वो लंका पहुंच गया समुद्र पार करके। तो ये सेना को आदेश, चलो अभी सबको मालूम है एक कथा चल रही है, इसमें सत्य कुछ नहीं है, मतलब सत्य है लेकिन वो पुरातन सत्य है, आज नहीं हो रहा है। लेकिन राजा इतने भाव में थे, अभी राजा ने आदेश तो किया, सेनापति क्या बोल सकता है, सेना भी चल रही है, सब लोग समुद्र तक पहुंचे और ये घोड़ा लेकर समुद्र के बीच गए, बोल रहे आक्रमण, वो सब सेना अरे कोशिश कर रही, राजा का आज्ञा तो पालन करना ही है, कैसे छोड़ सकते हैं। तो सेना सेना के अग्रभाग में राजा, ऐसा नहीं कि राजा पीछे से आदेश दे रहा है सेना को, जाओ आगे आगे मरो पानी में जाके, ऐसा नहीं है, सबसे आगे सेनापति मतलब राजा, सेना का सेनापति राज्य, उसके पीछे बाकी सब सेनापति जो भी मंत्री संतरी है सब सैनिक जो है, लेकिन खुद आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, जल में डूब रहा है घोड़ा, फिर भी आक्रमण कर रहे हैं। फिर आगे जाके फिर मंत्री ने जाके समझाए, महाराज महाराज ये अभी नहीं हो रहा है, ये बहुत लाखों साल पहले की कथा है। तब राजा बाह्य चेतना में आ गए, मतलब होश में आ गए, हम लोग हमारी भाषा में होश में आ गए, समझ गए करे भाई ये कथा है और इसमें ये अभी नहीं हो रहा है, पहले हुआ था। तो वो शांत होके भी सब लोग लौट के आए समुद्र से, ऐसे राजा थे वो कुलशेखर, उन्होंने ये श्लोक लिखा है। कितने बड़े भक्त होंगे वो राम के बताओ, ये कथा बड़ी फेमस है उनकी। भाव में वो खुद तो भाव में सबको ले जा रहे हैं समुद्र के अंदर, देखो। तो ये कथा हो गई। दूसरी कथा राजा इंद्रदुम्न की, जिन्होंने जगन्नाथ जी को प्रकट किया है ना, उनकी कृपा से जगन्नाथ जी प्रकट हो गए दुनिया में, वो भी ऐसे ही थे, इतने बड़े वीर थे वो, इतने शूर वीर थे, लेकिन वही चीज परफेक्ट राज्य सब उनका, किधर कोई गड़बड़ नहीं, कोई पाप नहीं कर रहा है, सब लोग फर्स्ट क्लास अपना काम कर रहे हैं, कोई खेती कर रहा है, अन्न धान्य निर्माण कर रहा है, धन दौलत आ रही है ठीक से, कोई समृद्धि कोई प्रॉब्लम, रात को वर्षा होती है दिन में वर्षा नहीं होती है, अति वर्षा नहीं होती है, बाढ़ नहीं आती, अकाल नहीं पड़ता है, किधर कोई अकाल मृत्यु किसी का होता नहीं है, ये सब समृद्धि के लक्षण है। अकाल मृत्यु न होना, पिताजी के सामने बच्चे की मृत्यु न होना, ये सब समृद्धि के लक्षण है, पुण्यकाल के लक्षण है, सब कुछ बढ़िया हो रहा है। तो शासन करने के लिए कुछ है ही नहीं बचा हुआ। तो राजा इंद्रदुम्न भी हमेशा सत्संग ही करता था दरबार में बैठ के, दरबार में कभी भी जाओ, जैसे अपना पार्लियामेंट में कैसे होता है, कभी भी जाओ हमेशा मारामारी चलती रहती है पार्लियामेंट में, कभी कोई वाटर पॉट फेंक रहा है, कोई वाटर क्या बोलते हैं उसको पेपर वेट फेंक रहा है, कोई पेपर फाड़ के बीच में आके डाल रहा है कुछ, उधर किधर सभापति के ऊपर कुछ फेंक रहा है। तो आप कभी भी जाओ तो पार्लियामेंट में क्या हो रहा है, गाली गलौज दंगा मस्ती, हाँ सब किल्लोल चल रहा है सब जगह पे, क्या चल रहा है समझ में आ रहा है, ये लोक प्रतिनिधि है कि कौन है, ये इतने सम्माननीय मंत्री भाई तो वो भी आके गाली दे रहे हैं, उनको भी गाली दी जा रही है, उनको बोलने दिया नहीं जा रहा है, ये हमारी सामान्य स्थिति है। और आप कभी भी इंद्रदुम्न राज के दरबार में जाओ, जब भी जाओ तो आपको महान संतों के दर्शन होंगे, वही वही सेम सेम नहीं, सब संत ही है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट संत आते रहेंगे, आज कोई है दूसरा कोई है। और सबको पता था कि सत्संग सुनना है इंद्रदुम्न के दरबार में जाओ, आपको बड़े बड़े महान हस्तियों के दर्शन होंगे, कथा भी सुनने मिलेगी, सत्संग भी होगा, जीवन का उद्धार होगा, ये सब संतों को पता था, इसलिए वो बिंदास उनके दरबार में प्रवेश करते थे और उनका सत्कार होता था, बढ़िया से कहानी सुननी मिलती थी, सत्संग होता था, प्रसाद मिलता था और दक्षिणा मिलती थी और चले जाते थे वो। क्यों? क्योंकि सहयोग था सभा में, सब जगहों की प्रजा में सहयोग था, कोई प्रॉब्लम नहीं था किधर, तू मैं नहीं थी उसके अंदर, कोई किसी का दुश्मन नहीं था, सब लोग भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं, राजा की सेवा कर रहे हैं, राजा भगवान का प्रतिनिधि है, स्वयं भक्त है, स्वयं संत है, राजा इतना बड़ा संत है राजा है कि उसके लिए ही भगवान जगन्नाथ के रूप में प्रकट हो गए, बोलो एक पूरा रूप धारण कर लिया उन्होंने, आज तक जगन्नाथपुरी में बैठे हुए हैं वो, सत्य युग की बात है और वो आज तक बैठे हुए हैं। राजा तो चला गया कब से जन्म समाप्त करके, लेकिन उस व्यक्ति के लिए ब्रह्मा के दूसरे 50 साल के लिए एक विशेष रूप धारण करके उसी राजा के लिए आए भगवान, उससे बातचीत की उन्होंने भगवान ने, बोलो उसकी पत्नी उनकी प्रचंड महिमामान भक्त बनी। दूसरा उदाहरण, जहां पर प्रशासन को कोई काम नहीं रहता है, जहां पर सारी प्रजा सहयोग से चलती है, सब नियमों का पालन करती है, कोई उसका उल्लंघन नहीं करता है, कोई द्वेष नहीं करता है, कोई भेद नहीं करता है, कोई झगड़ा नहीं करता है, कोई पॉलिटिक्स नहीं करता है, राजनीति नहीं करता है, किसी के पाँव नहीं खींचता है, सब लोग अपने अपने काम में परफेक्ट हैं और सब लोग सहयोग पूर्णता से काम कर रहे हैं। फिर प्रशासन को काम क्या बचता है? वही भजन करना है, और क्या काम ही नहीं कुछ। ये आदर्श स्थिति है। अरे वो तो मैं अभी आपको सत्ययुग की और पुराने युग की कहानी बता रहा हूँ, अभी अभी की कहानी बताता हूँ, जब रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी दोनों थे दुनिया में, तो वो गोस्वामी बनने के पहले कौन थे? सकर मलिक और डबीर खास थे वो, मतलब नवाब हुसैन शाह के राज्य में प्रधानमंत्री और अर्थमंत्री थे वो। और शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब वो उनको ना जबरदस्ती बनाया गया मंत्री चंत्री, क्योंकि वो इतने विद्वान थे, केवल भक्ति वाले शास्त्र में नहीं बाकी सारे शास्त्र में भी इतने विद्वान थे, आप धनुर्वेद बोलो, आयुर्वेद बोलो, आप क्या बोलो, दुनिया में कौन सा वाणिज्य शास्त्र बोलो, राजनीति बोलो, जो आप जितना वेद में ज्ञान दिया वो सब पारंगत थे, वो एक्सपर्ट थे वो। तो नवाब हुसैन शाह मुसलमान राजा था, उसको पता था कि ये दोनों बड़े विद्वान हैं और कुशल प्रशासक भी हैं, तो उन्होंने उनको बताया हमारे राज्य के आप प्रधानमंत्री अर्थमंत्री बनो। बोले नहीं, हमको नहीं बनना है, हमको अपना जो भागवत चल रहा है बढ़िया है उसके अंदर। तभी कैसे उनको लगाए? तो धमकी दिया उनको, आप दोनों नहीं मानोगे ना तो सारी मेरे राज्य के हिंदुओं का मैं कत्ल कर दूंगा, उनको कष्ट दूंगा, पीड़ा दूंगा, क्या कहते हैं उसको, छड़ करूंगा। मतलब क्या छड़ का मतलब क्या होता है मराठी में? छड़ छड़ करने मुझे क्या मतलब, हरास करूंगा जनता को, त्रस्त करूंगा उनका, पीड़ित कर दूंगा, पूरा आतंक बचाऊंगा जनता, हिंदू जनता के लिए। तो हिंदू जनताओं के ऊपर आतंक को बचाने के लिए उन्होंने राजी हो गए उस आखिर में, चलो भाई मान लेते हैं, अभी क्या करें, हमारे हाँ कहने से अगर अगर इतने सारे हिंदुओं की जान बच सकती है तो ठीक है, मैं आपकी नौकरी करेंगे। और इतना बड़ा तनख्वाह दिया उनको, गए धन से लाद दिया उनको पूरा। और उन दोनों ने वो राज्य कारोबार इतना बढ़िया संभाला ना, इतना बढ़िया संभाला, राजा को कोई काम ही नहीं है, दोनों ने मिलकर पूरा राज्य का प्रशासन संभाल लिया। और राजा क्या करेगा अभी? राजा तो खाली सफर ही कर रहा है, ये राज्य को जीत रहा है, हाँ मतलब यहाँ से अफगानिस्तान गया वो जीत लिया, वहाँ गया पाकिस्तान वो जीत लिया, वहाँ बर्मा देश जीत लिया, और बांग्लादेश जीत लिया, और श्रीलंका गया उसको जीत लिया, ऐसा काम चालू किया उसने, क्योंकि सब कुछ बढ़िया चल रहा है यहाँ पर, यहाँ बैठ के करना क्या है, काम तो है नहीं कुछ, तो राज्य की सीमा का विस्तार किया जाए, इसलिए वो राजा केवल यात्रा ही कर रहा है यहाँ से वहाँ, वहाँ जाके युद्ध करना, उनको हराना और राज्य अपना बनाना, वो धन को अपना बनाना, फिर वो जीत गया तो अगले राज्य जाना, वहाँ पर अटैक करना, आक्रमण, वहाँ को जीत कर उसको अपना बनाना, राज्य की सीमाओं का विस्तार करते रहना, क्योंकि अपने राज्य में तो कोई तकलीफ है ही नहीं, जो जो नया राज्य जीतते जा रहा हूँ वहाँ पर भी इनका शासन चालू होते ही सब बढ़िया से बढ़िया काम हो रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। और इतना उनका सुंदर प्रशासन था कि वो खुद भी भगवान का भजन ही करते थे, ऐसा नहीं कि ये लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और राजा अपना आगे का बड़ा काम कर रहे हैं, ऊंचा काम कर रहे हैं, नहीं, ये लोग भी, इन्होंने ऐसा सेटिंग किया था सब सिस्टम का कि सब लोग सहयोग पूर्णता से काम कर रहे हैं, राज्य बहुत बढ़िया से चल रहे हैं, कोई भी किधर टेंशन नहीं है। फिर उनको उसमें भी उनको रुचि नहीं आया, इतने बढ़िया काम कर रहे थे वो, इतनी बढ़िया तनख्वाह ले रहे थे, इतना बढ़िया प्रॉपर्टी, कहते हैं राम किली में उनका इतनी बड़ी जगह थी कि उन्होंने वो पूरा वृंदावन बनाया राम किली में, आज जो वृंदावन है ना, जमुना, गोवर्धन, बारावन, ये सब उन्होंने अपनी जमीन पर बनवाए, ये सब जैसे हमने हमारे गुरुजी ने बनाया वैसे बनाया उन्होंने, और उसी में रहने लगे वो। और इतना उनको मन वृंदावन में लग गया कि अपना बोलना अभी कि अभी हमको काम नहीं करना है, राजा किसी दौरे पर है और इन्होंने निर्णय लिया कि अभी नहीं करना है हमको, तो घर में भागवत का पाठ कर रहे, दूर दूर से विद्वान, कहते हैं भारत भर में सबसे श्रेष्ठ विद्वान ने थे, इसलिए उनकी बात सुनने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी और संत लोग आते थे, तो सब लोग जमा है उनके घर पे, जब भी आओ खाओ पियो प्रसाद लाओ और दिन भर भागवत सुनो। तो राजा एक अपना दौरा खत्म करके आ गया जीत के, बोला अरे ये दोनों को नहीं आ रहे, कह रहे सिक लीव पर है, क्यों? अब बीमार है बोलते, ठीक है बीमार है, 7 दिन हो गए नहीं आए। अभी ऐसा नहीं था कि वो उनके ऐसे खड़क राजा थे, बहुत प्रेम था उनको रूप और सनातन के ऊपर, वो दोनों के ऊपर बहुत प्रेम था, तो प्रेम के वश उनको देखने को, एक बार क्या बीमारी हो गई, डॉक्टरों को लेके देखता हूँ क्या, मेरे प्रिय मंत्रियों को क्या हो गया ऐसा, गए घर पे तो क्या एकदम हट्टे कट्टे बैठे फर्स्ट क्लास, ही जनता बैठी हुई है और वो बीच में बैठे हुए प्रवचन कर रहे हैं भागवत के ऊपर, किधर बीमारी कुछ है ही नहीं। तो राजा ने प्रवचन के बाद में पूछा, भाई क्या हो गया तुमको? बोले नहीं हमको अभी कुछ नहीं करना, हम बीमार उमार कुछ नहीं, हमको अभी नौकरी नहीं करना। कैसे नौकरी नहीं करोगे? नौकरी तो करना ही पड़ेगा आपको। नहीं नहीं हमको नहीं करना, अभी हमारा दिल उठ गया, अभी हमको भजन करना है। देखो नहीं मानते हो अरेस्ट कर दूंगा आपको, जेल में डाल दूंगा। नहीं 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 हमको नहीं करना, आप जो करना है करो। अरे उन्होंने अरेस्ट कर लिया उनको, जेल में डाल दिया। बोलो उनको, और लंबी कहानी आगे की। वो कहने का तात्पर्य क्या है, इतना सुशासन था उनका कि किधर भी कोई गड़बड़ नहीं है। अगर उन्होंने रिटायरमेंट का नहीं सोचा होता तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं थी उनको, पगार भी चल रहा है, सत्संग भी चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो ये है सहयोग का प्रभाव। जब आम जनता अपना अपना कर्तव्य को पहचान कर बिल्कुल दिल से उस कर्तव्य को करती है, प्रशासन को कोई काम ही नहीं बचता है, दंड देने का कोई कायदा ही बचता नहीं है, कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आए दिन लोग दिन दहाड़े खून कर रहे किसी का, तो रोज किसी को फांसी लगाने का काम होता रहा उन्हें होगा ना, है कि नहीं? लेकिन अगर ऐसा कोई काम करता नहीं होगा तो फांसी क्या होती है ये भी लोग भूल जाएंगे, देने वाले भी, और क्या होता है वो सब लोग भूल जाएंगे। और 4 पीढ़ी में फांसी किसी को मिली नहीं, आज फांसी देने का समय आ गया तो फांसी क्या होती है लोग पूछ रहे हैं। कब होगा ऐसे? जब इतना सुशासन सुशासन चल रहा है, इसमें फांसी तक का गुनाह कोई करता ही नहीं है, तो उसको बेचारे को कौन रहेगा, वो जिसको फांसी देने को एक्सपर्ट है, वो मालूम है उसको, नॉलेज है उसको, नॉट पॉसिबल। जैसे आजकल के जमाने में फांसी तो क्या है, साल में एक बार किसी को, 2 साल में एक बार होती है, उसको तनख्वाह चल रही है उसके, लेकिन उसको काम नहीं है कुछ। 50 बार केस होगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, क्या क्या उसका रिक्वेस्ट किया जाएगा, तब जाके बोला नहीं इसको देना ही है फांसी, तो फिर वो एक आदमी को चढ़ाएंगे फांसी पर। जैसे कि वो था ना अपना अजमल कसाब, उसको चढ़ा दिया, उसके बाद में क्या है अफजल गुरु को चढ़ा दिया, उसके बाद में कोई है ही नहीं फांसी दिया हुआ। तो वैसे जो शासन बहुत बढ़िया होता है उसका रहस्य क्या है, शासन करता नहीं होता है उसका रहस्य, उसका रहस्य प्रजा होती है। शासनकर्ता अपना काम कर रहा है, लेकिन प्रजा जब सहयोग करती है तब शासनकर्ता यशस्वी होता है। प्रजा अपने असहयोग से प्रशासन को फेल कर सकती है। अरे जाओ किसी को, मोदी को बिठाओ या किसी उसके पिताजी को बिठाओ, हम लोग को तो, हम तो सुनने वाले नहीं हैं। तो वो क्या जादू करेगा? जब उनको लगेगा नहीं, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, हमको अभी सहयोग करना चाहिए, तब वो यशस्वी हो जाएगा, राजा के रूप में का नाम हो जाएगा इतिहास में। तो प्रजा बहुत जरूरी है, प्रजा राजा भी बहुत धार्मिक होना जरूरी है, और जब राजा धर्म का पालन करता है, सत्य के आधार पर चलता है, तो प्रजा को प्रेरणा मिलती है, और उसकी प्रेरणा से प्रजा जब सही रास्ते पे आती है तो उसको सुशासन कहते हैं। हम लोगों को उसी प्रकार से रहना है। जब तक विद्रोह करते रहेंगे, जब तक असहयोग करते रहेंगे, झगड़ा करते रहेंगे, तो ना असहयोग करने वाले को शांति होती है, ना उसको रोकने वाले को शांति होती है, ना अधिकार जिसको है उसको शांति नहीं है, और जिसके ऊपर उसका दंड दिया जाएगा उसको भी शांति नहीं मिलेगी। मतलब अखंड अशांति, इन शॉर्ट होलसेल अशांति। और उसको बदलना है तो क्या करना है? बस अपना अपना काम दिल से, प्रेम से, कूटनीति के अलावा, हाँ द्वेष के अलावा, घृणा के अलावा, मित्रता के साथ, सहयोग के साथ, प्रेम से करेंगे, उच्च उद्देश्य को देख के करेंगे, वृंदावन धाम को देख के करेंगे, ब्रजवासियों को सेवा को देख के करेंगे, हाँ इतने बड़े भाग्य को देख के करेंगे, तो फिर झगड़े वगड़े वो ये गटबाजी कैसे होगी? वो कैसे हो सकता, कैसा मुमकिन है, वो नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको खुद को भी शांति चाहिए तो भी हमको सहयोग की आवश्यकता है। आपकी शांति गई XYZ में, लेकिन शांति मुझे तो मिलनी चाहिए, मैं तो चाहता हूँ मेरी मिले, और खुद की शांति की व्यवस्था खुद को ही करनी पड़ती है। बाहर से शांति आप खरीद नहीं सकते हैं, किसी से उधार ले सकते नहीं हैं, अपनी शांति की व्यवस्था अपने व्यवहार से खुद ही करनी पड़ती है। और जब आप खुद को शांति देते हो, खुद शांत होने की वजह से आपके सहयोग में, मतलब कि आपके सहवास में, आपके संग में दूसरों को भी शांति का अनुभव होगा। होगा कि नहीं होगा? जब आप अशांत हो तो आपके बात भी करने की जरूरत नहीं, आपके संग में आते ही वो अशांति का अनुभव करेगा। और आप शांत हो, परम शांति का अनुभव कर रहे हो। आपके संग में आते ही दूसरा आदमी जो भड़क के आया हुआ वो भी शांत हो जाएगा। जो अंदर है वही प्रभाव करेगा। अंदर क्रोध है तो क्रोध प्रभाव करेगा, अंदर शांति है तो शांति प्रभाव करेगी, अंदर प्रेम है तो वो प्रेम प्रभाव करेगा। ये सब अपनों हम लोग के हाथ में है। क्या जीवन में हासिल करना है ये हमारे हाथ में। और बाकी फिर चित्रगुप्त तो बैठा ही है वो। आप जो जो रास्ता तय करते हो वो सब रास्ते में क्या क्या किया उसका हिसाब रख रहे हो। उसके से ही बचने वाला कोई नहीं है। अरे बचपन में मांडव्य ऋषि ने खेल खेल में एक पतंग को पकड़कर, पतंग मालूम है आपको, पतंग क्या बोलते, परवाना, वो जो अग्नि में घुसता है ना, ज्योति में ऐसा प्रवेश करके मर जाता है, पतंगा, उसको संस्कृत में कहते हैं पतंगिका, पतंगिका कहते हैं उसको। तो वो बचपन में खेल खेल में अनजान में वो मांडव्य ऋषि जब बालक थे तभी उसने पतंग को पकड़कर उसके पार्श्व भाग में ये सुई घुसाई थी खेल खेल में। बाद में संत बने, ऋषि बने, हाँ योगी बने, सिद्ध योगी बने। तो सिद्ध योगी बनने के बाद भी एक चक्र में फंस गए वो, चोरी वाले चक्र में, खुद तो नहीं किया था लेकिन फंस गए वो। तो उनको सूली भी चढ़ा गया, लेकिन थे साधु, तो थे तो बड़े साधु थे, तो सूली पर तो बाकी चोर थे वो सब चढ़ गए, मर भी गए, लेकिन ये सूली पर ही ध्यान लगाकर बैठ गए, आसन जमा कर, सूली अंदर घुस गई है और उसमें बैठ कर जप कर रहे हैं। 6 महीना जप किया। उसके बाद में ऋषिगण जो है ना, बाकी सिद्धगण दूसरे वाले, वो पक्षी बनकर आए। अरे बोले महाराज क्या चल रहा है आपका ये? तो बोले क्या करूं, ऐसे मुझे चलाएगा इसके ऊपर, मैं भी इस पर बैठ कर ध्यान कर रहा हूँ। तो पक्षीगण जो ऋषि थे वो राजा के पास गए, राजा आपने क्या किया, किसको दंड दे दिया आपने? तो मांडव्य ऋषि है ये। अच्छा, तो उन्हें बिना देखे बोला सबको सूली पे चढ़ा दो, ऐसे बोला था ना, जितने चोर पकड़ के लाए हो सबको सूली पे चढ़ा दो। मैं देखा भी नहीं कौन क्या है, मैंने गुस्सा आया था मुझे तो दंड दे दिया। भाग भाग के आए, चरणों में गिरे, महाराज जी माफ करना, मैं पहचाना नहीं आपको, मैंने देखा भी नहीं, माफी चाहता हूँ। तो सूली से बाहर निकालने का प्रयास किया तो सूली ऐसे फिट हो गई थी 6 महीने के बैठने से, वो सूली निकल ही नहीं रही है। मतलब ये समझो ऐसा लंबा है, उसके अंदर बहुत धार धार कुछ चीज़ है, वो अंदर घुस के ऐसे बैठी है कि निकल ही नहीं रही। तो काट दिया गया उसको और अंदर का भाग अंदर ही रह गया। अणी बोलते उसको, अणी, जो अणी थी उसकी नोकदार वो अंदर ही रह गई। तो नाम क्या पड़ा उनका, अणि मांडव्य ऋषि। इतने पावरफुल थे वो, वहीं से राजा ने काट कर फ्री कर दिया, सीधे यमलोक में गए वो। यमलोक को बोला पहले बताओ किस चीज का मुझे आपने ये दंड दिया है। क्या बोले बाद में, पश्चिमी बलस्य, बाद में मेरा बल दिखाता हूं आपको, पहले बताओ। तो ऋषि का मूड देख के यमराज भी टेंशन में आ गए, बाप रे इतना मतलब पावर आदमी है ये, पूछ रहा है कि पहले बताओ किस चीज़ का दंड दिया, बाद में बताता हूँ मेरा बल क्या है। तुरंत भाई चित्रकूट जल्दी जल्दी बताओ बाबा। तो निकाला उसने पोथी सब निकाला, भिखा कह रहे बचपन में तुमने पतंगिका नाम बताया शोक श्लोक कि तुमने घुसाया था उसके पीछे इसलिए आपको दंड दिया। अरे कमाल है तुम्हारी बात, बचपन में क्या किसको पता चलता है क्या हो रहा है, तुमको क्या मालूम, तुम इतने बड़े बड़े पोजिशन में बैठे हो और कायदा बनाते रहते हो, उसका अमल करते रहते हो, तुमको क्या मालूम भौतिक दुनिया में जाने के बाद जीने के समय पे कितना कठिन है पाप से बचना। जाने अनजाने पाप होते हैं उसका रिकॉर्ड होता है, उसका भी दंड भोगना पड़ता है। आपको क्या मालूम नीचे रहते हुए कितना कष्ट है उसको पाप न किए बिना रहना। तो यमराज समझ गए कि हाय गड़बड़ है, अभी शायद मुझे अभी नीचे ही भेजने वाले लगते हैं। बोले तो आपको जाना होगा नीचे अनुभव करने के लिए कि क्या होता है उधर। हाँ ऊपर से बैठकर कायदा करना बहुत अच्छा होता है, नीचे भेजता हूँ आपको भी। तो यमराज बोले इतने बड़े महान ऋषि है, उसने यमराज का जो कायदा था ना बदल दिया उधर ही। बोला मैं ऐलान करता हूँ आज से 14 साल तक, श्लोक है महाभारत में, 14 साल तक कोई बालक का कोई गुनाह बालक के नाम पर नहीं दर्ज होगा, उनके माता पिता के नाम पर दर्ज होगा और माता पिता दंड भोगेंगे उसका। 14 साल तक किसी बालक को किसी गुने का दंड भुगतने को नहीं मिलने आए मिलने वाला है। चेंज कर दिया यमराज ने, इतना पावरफुल ऋषि थे वो मांडव्य ऋषि, भगवान का बनाया कायदा उन्होंने चेंज कर दिया और वो आज भी अमल में है वो। तो यमराज ने बोला कि बाप रे जाना तो पड़ेगा अभी। तो बोले महाराज एक काम करना, राजा मत बनाना मुझे, नीचे जाकर, क्योंकि राजा धर्म पालन करते हुए बहुत बार गलत काम करना पड़ता है। अभी क्या है, राजधर्म इतना कठिन है ना। कभी देखो राम जी का, देखो एक पति धर्म है, एक राजधर्म है, एक पुत्र धर्म है, फंस गए बेचारे वो चारों धर्मों के बीच में। चारों धर्म परफेक्टली कैसे करेंगे, इसमें गड़बड़ होगी तो ये सही होगा, ये सही होगा तो ये गड़बड़ होगा। तो राजा मत बनाओ, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और सब कुछ आदर्श आइडियल आदर्श तरीके से करना बहुत मुश्किल काम है। तो सुन रहे हैं, क्रोध में तो है, सुन रहे हैं। बोले मुझे, और मुझे ना दास मत बनाना किसी का। बोले क्यों? बोले दास को भी ना, जब आज्ञा होती, स्वामी की आज्ञा होती है ना, तो कभी कभी धर्म विरुद्ध काम करना पड़ता है। राजा ने बोला अभी वो गलत है तो भी क्या हुआ, करना तो पड़ेगा आपको। राजा ने आदेश दिया तो आप बोलेंगे नहीं राजा धर्म के विरुद्ध है। बोला ना मैंने पालन करो आज्ञा का, बाद में सब देख लूंगा मैं, मेरा आपका काम मेरी आज्ञा पालन करना है, चुपचाप पालन करो। तो मुझे दास मत बनाओ। और एक है, चांडाल मत बनाओ, कुत्ता खाने वाला। चांडाल तो बहुत बेकार होता है। अच्छा, आपको यही तीन बनना पड़ेगा। मतलब क्रोध में थे ना वो, नाराज थे कि आपने इतने छोटे से काम को इतना दंड दिया। तो फिर वो यमराज राजा के रूप में युधिष्ठिर बने, दासी पुत्र के रूप में विदुर बने, और चांडाल के रूप में एक वाल्मीकि नाम के ऋषि बने। वो वाले नहीं रामायण वाले, दूसरे ये द्वापर वाले, वो त्रेता वाले। और फिर आगे उनकी कहानी है, कैसे कैसे क्या क्या हुआ। ये सब मैंने क्यों बताया आपको, कि जाने अनजाने में भी कुछ करेंगे आप, दंड तो मिलेगा ही, कोई छूटने वाला नहीं है, कोई भी छूटने वाला नहीं है। टोकन क्यों ना हो, छोटा क्यों ना हो, पूरा दंड ही तो छोटा, उसका अवशेष क्यों ना हो, भोगना तो पड़ेगा ही, उतना तो मिलेगा ही। अगर आप संत बने आगे जाकर, संत तो मांडव ऋषि बन गए थे ना, फिर भी उनको मिला जरूर, उससे वो पूरा माफ नहीं हुआ उनका, वो डेटा कैंसिल नहीं किया गया, डिलीट नहीं किया गया उसको, वो उनको भुगत नहीं पड़ा। भले वो मांडव ऋषि थे, भले उनके पास उतना अधिकार था, हम लोग गए वहां जाकर संवाद किया, यमराज को ही शाप देकर उन्होंने पृथ्वी पर भेज दिया, लेकिन फिर भी उनको अपना दंड जो था उसको वो चुका नहीं पाए। चुका पाए क्या? अगर चुका पाने का समय सक्षमता होती तो जब भी दंड दिया होता तभी वो बोलते हे मुझे कौन चढ़ाएगा सूली पर, और लोगों को सूली चढ़ा नहीं पाते थे, लेकिन लोगों ने सूली पर चढ़ाया उनको। 6 महीने तक दर्द सहन करना पड़ा उनको, इतने बड़े अधिकारी थे वो, उन्होंने यमराज का कायदा भी बदल दिया, फिर भी वो अपने कायदे से अपने दंड से मुक्त हो नहीं पाए। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हम जाने और अनजाने में जो भी करेंगे, अच्छा या बुरा, उसका सबका रिकॉर्ड रखा जाता है और उससे कोई बच नहीं पाता है। कितनी भी क्षमा करने पर भी उसको वो बच नहीं पाता है, उसको उसका फल जो है अच्छा या बुरा वो भोगना ही पड़ता है। इसलिए इस दुनिया में हम कितना भी उल्लू बनाएंगे लोगों को, खुद को भी उल्लू बना सकते हैं आप, लेकिन जो नियम भगवान ने बना के रखा है उसको उल्लू नहीं बना सकते। खुद को भी मूर्ख बना सकते हैं आप, लेकिन भगवान को मूर्ख नहीं बना सकते। भगवान ने जो कायदा सेट किया है उसको मूर्ख नहीं बना सकते, उसके पकड़ से आप छूट नहीं सकते। वो ऐसे पकड़ते हैं जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ती है, वैसे हमको पकड़ा जाएगा और हमको दंड मिलेगा उसका। उस समय पश्चाताप करके कुछ फायदा नहीं होता है, वो दंड का फल भोगना ही पड़ता है। तो आइए हम इन राजा की कथाओं से ये समझ लें कि राजा इंद्रदुम्न, राजा कुलशेखर और रूप सनातन गोस्वामी हमारे जब सेवा कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, तो किस प्रकार उनका समय था। उसका समय को अगर हमको पैदा करना है तो हमको केवल सहयोग करना होगा, अपना अपना काम ठीक से करना होगा, काम चोरी नहीं करनी होगी, द्वेष नहीं करना होगा, घृणा नहीं करनी होगी, और प्रेम से भगवान को संतुष्ट करने के लिए कार्य करना होगा। तो सबका जीवन संतुष्ट है, आपका भी है, हमारा भी है, शासनकर्ता का भी संतुष्ट है, प्रजा का भी संतुष्ट है, सबका भरभराट आनंद प्रगति समृद्धि सब आपके लिए हाजिर है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।